तो अभी तक हमने शरणागति कृष्ण ने भगवान से चर्चा किया कि किस तरह से भगवान कृष्ण शरणागति होनी चाहिए। एक्चुअली भगवान ये 18वां अध्याय पूरा इसी उद्देश्य से बता रहे हैं कि शरणागति का क्या महत्व है, क्योंकि भगवान चाहते यही है कि अर्जुन अपनी इच्छाओं का त्याग करे और शरणागत हो जाए, यही चाहते हैं। और यही एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से भगवान भी चाहते हैं हमसे कि हम शरणागत हो भगवान के। शरणागति होने से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन में। तो आप सब भक्तों जो यहाँ पर कोर्स कर रहे, ये तो अभी 18वां चैप्टर तो हो सकते शायद आज खत्म ही हो जाएगा, लेकिन कोर्स का तो 18 चैप्टर खत्म हो गया और उसके बाद तो फिर हम फिर से कहीं दोबारा भक्ति शास्त्री कोर्स कुछ पढ़ने नहीं वाले, और रादर ना ही हम इस विषय में, इस श्लोकों के विषय में अगेन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि जब हम सीख रहे हैं यहाँ पर भगवान के विषय में, भगवान के शरणागति विषय में, तो ये समझना चाहिए कि भगवान हमसे पूरी शरणागति मांग रहे, पूर्ण रूप शरणागति। और ये तभी संभव हो सकता है कि आप हर छोटी चीज के लिए, आप जीवन की हर छोटी छोटी बड़ी सभी समस्याओं के लिए या सभी परिस्थितियों के लिए कृष्ण पर निर्भर करना सीखे, यही भगवान चाहते हैं। कृष्ण पर निर्भर करना सीखना है, तो किस तरह से कृष्ण हमारी सहायता करते हैं और उनके द्वारा बताए गए आदेश का पालन करना। क्योंकि शरणागति का अर्थ ये होता है कि देने के डिपेंड करना और रोते रहना, या फिर डिपेंड करना और चिंतित रहना, ये सब नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण के आदेशों का पालन भी करना। इसको शरणागति यही बोलता है कि कृष्ण विल डू हिज पार्ट एंड वी अवर पार्ट, एंड व्हाट इज अवर पार्ट, अवर पार्ट इज दैट लिसन एंड फॉलो एंड डू एग्जैक्टली व्हाट एवर ही वांट्स। ये शरणागति हमारा पार्ट ये है कि हम जो भी हमें बताया गया है वो पूरा करें, दैट इज अवर पार्ट। अब इसके अतिरिक्त जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज कृष्णस पार्ट, एंड देन ही विल डू। उनके पार्ट को कब करना, कैसे करना, करना नहीं करना, ये सब उनका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिसीजन है। भगवान स्वतंत्र ईश्वर है। स्वतंत्र ईश्वर का अर्थ होता है कि उनको कोई चीज बांध नहीं सकती, ना उनको नियम बांध सकते हैं, ना कुछ भी नहीं बांध सकता, ये स्वतंत्र ईश्वर है। लेकिन उनको एक ही चीज बांध सकती है, हमारी शरणागति। अगर हम ये था माम प्रपद्यन्ते तां सथैव भजामि, जो जिस भाव से भगवान की शरणागत होता है, भगवान उसको उस भाव से रिसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से शरणागत होने का लक्ष्य बना करके ही 18वें अध्याय से बाहर निकलना चाहिए कि भगवान जो अवस्था में मुझे रखना चाहेंगे मैं तैयार हूं। ये बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपके सामने कसौटियां आती है, आपको लगता है कि मैं किसी भी कसौटी को इजीली फेस कर सकता हूं, लेकिन हम जानते हैं कि ये इजीली शब्द बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब समय आता है तब। इसलिए ध्यान रखना चाहिए भक्तों को कि इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो फिर आपको भगवान खुद ही याद कराएंगे आपको किसी वैष्णव के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, कि तुम तो बड़ी बात कर रहे थे शरणागति की, कहां गई तुम्हारी शरणागति, भगवान फिर आपको याद करवाएंगे। भगवान याद कराए इससे अच्छा है कि हम खुद ही इसको याद रखें और हम इसको भूले नहीं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि शरणागत होने के विषय में, नाउ कृष्ण हैज जस्ट कंप्लीटेड स्पीकिंग भगवद गीता ऑलमोस्ट, तो शरणागति को लेकर किसी को कोई प्रश्न है और वी कैन कंटिन्यू फर्दर। ओके सो भगवान यहाँ पर ऑलमोस्ट भगवद गीता समाप्ति कर दिया कि सन्नाट हो जाओ। अभी ये जो इतना महान ग्रंथ हमें दिया है ना, तो अभी थोड़ा भगवद गीता का ग्रंथ तो हमने सिखा दिया भगवान ने और ये 18 अध्याय भी ऑलमोस्ट समाप्त हो गए। अभी भगवान के द्वारा गीता दिया गया ये गीता का जो संदेश है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसको एकदम से कपड़े में लपेट करके अपने अलमारी के किसी एकदम गुहे कोने के खाने के अंदर डाल देना चाहिए, या फिर हमें पब्लिक में जाकर के लाउड स्पीकर में जाकर के भगवद गीता बताना चाहिए? अगर चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का संदेश दिया जाए कि इसको ये सबको बांटना चाहिए, तो किसको किसको बांटना चाहिए, कौन उसका क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है? अगर कोई समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूट किया भी उसको क्या परिणाम भगवान देंगे, और जिसने सुना है जिसने पढ़ा है या तो उसको क्या भगवान परिणाम देना चाहते हैं, इन सब बातों को लेकर के आने वाले कुछ 10-12 श्लोक हैं और उसके पश्चात फिर भगवद गीता समाप्त होती है। सो श्रुतिफल हर एक चैप्टर या हर एक जगह पर शास्त्रों में देखा जाता है कि श्रुतिफल दिया जाए, श्रुतिफल अर्थात ये पर्टिकुलर शास्त्र को पढ़ने का क्या फायदा या उसका क्या महत्व है। सभी ना और टेक्स्ट नंबर 67 से भगवान भगवद गीता के इस पर्टिकुलर विषय के विषय में बताते हैं।
जे मनुष्य संयमी नथी, निष्ठावान नथी तथा भक्ति में परो वायला नथी, તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં, વળી મારો દ્વેષ કરનારને પણ તે આપવું નહીં. જે મનુષ્યોએ ધાર્મિક વ્રત તપ કર્યા નથી, જેમણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી, જેમણે શુદ્ધ ભક્તિમાં સેવા કરી નથી, અમે ખાસ કરીને જે લોકો કૃષ્ણને કેવળ એક ઐતિહાસિક પુરુષ માને છે અથવા જેઓ કૃષ્ણની મહાનતા પ્રતિ દ્વેષ કરે છે, તેમને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવું ન જોઈએ. પરંતુ કોઈ વખત જોવામાં આવે છે કે કૃષ્ણનો દ્વેષ કરનારા આસુરી મનુષ્યો સુધા કૃષ્ણની પૂજા જુદી જુદી રીતે કરે છે અને ધંધો ચલાવવા માટે ભગવદ ગીતા પ્રવચનો વેપાર કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય વાસ્તવમાં કૃષ્ણને જાણવા ઈચ્છતો હોય તેણે ભગવદ ગીતાના આવા ભાષ્યોથી અગળા રહેવું જોઈએ. વસ્તુતઃ કામી મનુષ્ય ભગવદ ગીતાના આશયને સમજી શકે નહીં. જો મનુષ્ય કામી ન હોતા વૈદિક શાસ્ત્રોમાં નિર્દિષ્ટ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરતો હોય તો પણ જો તે ભક્ત ન હોય તો તે કૃષ્ણને સમજી શકશે નહીં. અને કૃષ્ણ ભક્ત તરીકે ડોળ કરનારો મનુષ્ય જો કૃષ્ણ ભક્તિયુક્ત કાર્યોમાં ખરેખર પરોવાતો નથી તો તે પણ કૃષ્ણને સમજી શકે નહીં. ઘણા લોકો કૃષ્ણની ઈર્ષા કરે છે કારણ કે તેમણે ભગવદ ગીતાનું ગીતામાં જણાવ્યું છે કે તેઓ પરમેશ્વર છે અને કોઈ તેમનાથી શ્રેષ્ઠ નથી કે તેમનો કોઈ સમકક્ષ નથી. કૃષ્ણનો દ્વેષ કરનારા માણસો અનેક છે. આવા માણસોને ભગવદ ગીતા કહેવી ન જોઈએ કારણ કે તેઓ તે સમજી શકતા નથી. શ્રદ્ધા વિહીન મનુષ્ય ભગવદ ગીતા તથા કૃષ્ણને સમજી શકે એવી કોઈ જ શક્યતા નથી. શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી કૃષ્ણને સમજ્યા વિના કોઈ પણ મનુષ્ય ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ. હરે કૃષ્ણ.
ત્યાં પર ભગવાન કહે રહે હૈ યે જ્ઞાન જો હૈ ઉસકો કિસકો નહીં બતાના હૈ. કોમ ક્વોલિફાઈડ નહીં હૈ લમ તે ન અતપસ્કાર અર્થાત જો સંયમી નહીં જો તપસ્વી નહીં હૈ ઓર ન ભક્તાય ન અભક્તાય અર્થાત જો ભક્ત નહીં હૈ ઓર ન ચ અશુશુષુવે અશુશુષવે અર્થાત જો લોગ ભક્તિ મેં રત નહીં હૈ તો કોઈ કહેગા કે ફિર તો કિસકો બતાને કા સબ એસે કે વૈસે હી યહી લગ તો તો પ્રભુપાદ જી બતાતે હૈ એક પ્રવચન મેં ઇસકો લેકર કે કે બહોત સારે એસે લોગ હૈ જો કૃષ્ણ કા ઈર્ષ્યા કરતે હૈ દેર આર સો મેની રાસ્કલ્સ કૃષ્ણ કે એનવિયસ હૈ ઓર ભગવદ ગીતા પોપ્યુલર ઇતના પોપ્યુલર બુક હૈ જૈસે આપકો ભી પતા હૈ કે આજ ભગવદ ગીતા કી 500 સે જ્યાદા કોમેન્ટરી ડાલ દીએ સબ લોગોં ને કુછ એસે લોગ ભી હૈ કે જિનકો ભગવાન કૃષ્ણ સે કુછ લેના દેના નહીં હૈ ઉન લોગોં ને ભી ભગવદ ગીતા પર કોમેન્ટરી ડાલ દીએ કુછ એસે લોગ ભી હૈ કે જો કેવલ ઇન્દ્રિય ભોગ યા કામ જીવન જો હોતા હૈ સેક્સ લાઈફ કેવલ ઉસકો હી પરમેશ્વર માનતે હૈ એસે લોગોં ને ભી ભગવદ ગીતા પર ટિપ્પણી લખી હૈ ટીકાએ લખી હૈ તો એ સબ અસુરી જો લોગ હોતે રાસ્કલ્સ દે આર એનવિયસ ઓફ કૃષ્ણ ઓર વો અપને અપને અર્થઘટન કો રખને કે લિયે વો ભગવદ ગીતા કા ઇસ્તેમાલ કરતે હૈ વાસ્તવ મે વો લોગ કૃષ્ણ કો માર ડાલના ચાહતે દે ડોન્ટ વોન્ટ કૃષ્ણ વો કૃષ્ણ ચાહતે હી નહીં કહીં પર દે વોન્ટ ટુ કિલ કૃષ્ણ સો જો કૃષ્ણ કો હત્યા કરના ચાહતે હૈ એસે અસુરી હોતે હૈ દે આર કન્સિડર્ડ ટુ બી અસુરીસ સો ભગવાન इस श्लोक में स्पेशली बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो दुष्ट बुद्धि वाले या भगवान का पूरा ईर्ष्या करने वाले जो होते हैं उनको भगवद गीता नहीं बतानी चाहिए। अतपस्काय अतपस्काय अर्थात जो पाप पाप से भरे हुए हैं, जिसने तपस्या जिसको पता नहीं तपस्या की कोई विधि का वो पालन नहीं करते वो क्या समझेगा भगवद गीता को। प्रभुपाद से इट इज नॉट टेबल टॉक कि सब जाकर बैठ और यू नो टेबल टॉक मीन्स कोई साधारण बात, ये कोई साधारण बात नहीं और सो कॉल्ड स्कॉलरशिप भी नहीं। जब तक आप जैसे शास्त्र में कहा गया है कि जब तक आप ब्राह्मण तक क्वालिफाइड नहीं बनते, ब्राह्मण अगर आप क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं हो तब तक आप वेदों को स्पर्श तक नहीं कर सकते। अर्थात ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज की चर्चा हमने पहले की थी कि सत्यता स्वच्छता इंद्रियों को निग्रह करना मन को वश में डालना शांति ज्ञान विज्ञान अस्तित्व ब्रह्म कर्म स्व ये सब नहीं होता है तब तक कोई वेद को स्पर्श तक नहीं कर सकता है। अब जब वो वेद को स्पर्श नहीं करता इसका अर्थ ये नहीं कि उसको छूने से उसको पाप लगता है, इसका अर्थ होता है कि वो समझेगा ही क्या, वो वेद को समझ ही नहीं पाएगा। Prabhupada says that it is not that Max Muller will translate the Vedas. This is all nonsense. What can Max Muller understand of the Vedas? Max Muller Ved ko kya samjhega? So, ye koi sadharan granth ya sadharan gnyan nahi hai. Ye adhyatmik vishay vastu hai. Om Tat Sat. Ye Tat Sat. Jab tak koi vyakti आगे नहीं बढ़ा है, जैसे आप समझ लो कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं होता है तो वो लॉ कॉलेज में एंट्री नहीं ले सकता। लॉ कॉलेज में निषेध नहीं है, वो पब्लिक के लिए खुला है, कोई भी जाकर के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि वो तभी एंट्री ले सकता है, सबके लिए नहीं है वो। हाउ कैन शूद्र अंडरस्टैंड वेदास, वेद शूद्र लोग वेद को कैसे समझ सकते हैं? इस वस्तु को कहते ये पूरा लेक्चर प्रभुपाद ने अहमदाबाद में दिया था। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अधिकतर लोग सब कंटामिनेटेड है, कृष्ण कहते हैं कि अधिकतर कंटामिनेटेड है, इसलिए जो अतपस्काय जो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, बहुत ज्यादा रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त है, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना, बहुत मुश्किल है। सत्वगुणी लोग मिलना बहुत मुश्किल है, कलव सुंदर संभव कलयुग में सब अधिकतर सुंदर है, इसलिए ये ज्ञान उन लोग के लिए है ही नहीं। और ना अभक्ताय, अभक्ताय का अर्थ होता है रास्कल्स। कृष्णा अर्जुन को भगवती का इसलिए बताया क्योंकि वो भक्त है, भगवान खुद ही कहते हैं कि भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ये तो तमाम। अर्थात अर्जुन अर्जुन ने पूछा आप मुझे क्यों सजग कर रहे हो, मैं तो कोई बड़ा वेदांती नहीं हूँ ना कोई सन्यासी हूँ, मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूँ, एक साधारण सैनिक हूँ, एक योद्धा हूँ, आप मुझे क्यों सजग कर रहे हो। तो भगवान कहते क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान को फेवरेबली सरेंडर नहीं होता या भगवान का विरोधी नहीं है या ईर्ष्या नहीं करता, वो लोग वास्तव में भगवान को समझ सकते, अन्यथा ये गलत जो इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं उसका परमिशन नहीं दिया है। सो वी आर प्रेजेंटिंग भगवद गीता एज इट इज, दिस इज द रीजन, नॉट टू द फूल्स एंड रास्कल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम चांस, लेट देम कम टू द टेम्पल, टेक प्रसाद, हियर संकीर्तन, ऑफर ऑब्लिगेशंस बाय इमिटेटिंग अदर्स। इन दिस वे when they become little purified you can instruct them, otherwise it will be useless, you will be wasting your time by arguing। ye prabhupada ne ant mein kaha tha ye ki ye murkh aur durto ke liye nahi hai, unko avsar do, mandir aane do, prasad khilao, thoda sankirtan sunne do, bhagwan hum logo ki nakal karke chahe pranam bhi wo log kar le, is tarah se thoda bahut shuddhata ho jayega to fir aap unko sandesh do, नहीं तो आपका समय बिगाड़ेंगे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे और आप कुछ समझा नहीं पाएंगे। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल होम टू गिव नॉलेज। अभी कोई ये प्रश्न कर सकता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, ये नॉलेज देना चाहिए, इसके विषय में प्रभात आने वाले श्लोक में बताता है, कृष्ण बताते हैं आने वाले श्लोक में। सो टेक्स्ट नंबर 68।
प्रभु हरे कृष्ण, एक क्वेश्चन नहीं है, एक मेरा एक अभी का रियलाइजेशन है, आई वुड लाइक टू शेयर। जैसे अभी मैं एक रूम मतलब एक हम लोग नामक प्रोग्राम में जूम कॉल पे एक नए मतलब काफी नए डिवोटी है, कुछ महीनों से, एक दो महीनों से ही वो डिवाइस कोर्स में आया। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैंने भगवत गीता में ऐसा मुझे लास्ट में मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछा कि मैंने भगवत गीता में ऐसा पढ़ा है कि भक्ति योग सबके लिए नहीं है, भक्ति योग जो है मतलब कर्म योग जो है वो सबके लिए है और भक्ति योग सब नहीं कर सकते, कर्म योग सब कर सकते, तो इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है भक्ति योग से। तो फिर मैंने मतलब मैंने उनको यही पूछा कि आपने ये भगवत गीता कौन सी प्रभुपाद की भगवत गीता में से पढ़ा है, तो उन्होंने बोला नहीं ये कुछ दूसरी भगवत गीता है। तो मतलब मैं भगवान की कृपा से मैं तुरंत ही समझ गया कि ये प्रभुपाद नहीं बोल सकते। सो दिस इज अभी का मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है बिफोर फ्यू डेज। तो फिर मैंने उनको हालांकि समझाया, बट दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू शेयर।
तो दिस इज वो तोड़ मरोड़ करके अपना विचार भगवद गीता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, भगवद गीता के श्लोक का उपयोग भी करते हैं, भगवद गीता के संदेश का उपयोग भी करते हैं। और इन लोग का उद्देश्य केवल एक ही होता है, क्योंकि अगर खुद की दुकान खोलेंगे तो कौन आएगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा, इसलिए ऊपर एक बैनर लगाना पड़ता है कि भगवद गीता का बताए। तो भगवद गीता अपने आप में फेमस है इसलिए सब उसकी दुकान में आएंगे, नहीं तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, कौन आएगा उसके पास। इसलिए सब लोग ने कमेंट डाल दिया, मैं भी एक मुझे भी क्वेश्चन दिया था भगवद गीता, कोई व्यक्ति था उसने बोला ये मैंने अपने विचार से भगवद गीता का पूरा कमेंट लिखा है और बहुत सारी कॉपियां छपाई है, तो बोले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, लाइए रख दिया मैंने। तो पॉइंट ये कि सब कोई चाहते है कि अपने विचार वो लोगों तक पहुंचाए और उसके लिए भगवद गीता इज द इजिएस्ट वे, लिखो भगवद गीता पे कमेंट्री और यू डू ऑल नॉनसेंस। सो दे आर रास्कल्स, दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड भगवद गीता, they are misusing Bhagavad Gita, so yes, they are all demon. So yes, so we can go with the next text number 68, which is one of the famous slokas.
For one who explains the supreme secret of the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me.
good.
Generally, it is advised that Bhagavad Gita is discussed among the devotees only. For those who are not devotees will understand neither Krishna nor Bhagavad Gita. Those who do not accept Krishna as he is and Bhagavad Gita as it is should not try to explain Bhagavad Gita whimsically and become offenders. Bhagavad Gita should be explained to persons who are ready to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. It is a subject matter for the devotees only and not for the philosophical speculator. Anyone, however, who tries sincerely to present Bhagavad Gita as it is will advance in devotional activity and reach the pure devotional state of life. As a result of such pure devotion, he is sure to go back home, back to Godhead.
Yes. So, Padam Paramam Ghoyam Madbhakteshwavidashyati. Madbhakteshwavidashyati. Arthat, jo vyakti mere is param rahasya ko, ya bhakto ko, bhakto ka artha jo na atapaskaya hai, na abhaktaya hai, aur इस प्रकार से जो भगवद गीता के संदेश को जो यथा रूप प्रकट करता है, जैसे समझ लो कि आपको ये सेवा दी गई हो कि आप भगवान के संदेश को प्रचारित कीजिए, भले आपको जितना आता है उतना कीजिए, लेकिन अब कीजिए, तो आपका लक्ष्य केवल यही रहना चाहिए कि आप जो कुछ भी बताते हो, भले आप 1% बताते हो या 2% बताते हो, आप भले ना थोड़ा ही 10 मिनट लेक्चर देते हो, लेकिन जो कुछ भी बोलो वो एज इट इज बोलो, एज इट इज बताइए, अर्थात डोंट ट्राई टू ऐड और सब्सट्रैक्ट एनीथिंग, उसके अंदर कुछ भी अपना विचार या कुछ ऐड या रिमूव नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कई बार भक्त लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी होते हैं, कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है कि हमसे तो नहीं होगा ये, हम कैसे इतना मेंटेन कर पाएंगे, नहीं ये हो सकता है इफ यू आर गुड लिसनर, अगर आपने अच्छे से समझा है भगवान की बात को, प्रभुपाद की बात को, तब आप अच्छे से समझा भी पाएंगे। इफ यू आर जो अच्छा श्रवण करता है वही अच्छा कीर्तन कर सकता है, इसलिए तो हम बात कर रहे थे कि उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती ही है कि जो व्यक्ति इस संदेश को और तक पहुंचाता है उस, हाँ हम ये बता रहे थे कि अगर आपको चाहे कितना भी आता हो लेकिन एज इट इज बताइए, कुछ इधर उधर मत कीजिए, और भगवान आपको पूरी सहायता करेंगे कि आप उस संदेश को बिना बदले और तक पहुंचा, और देखना इसका असर इतना स्ट्रांग होता है कि आप जितना विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ यथारूप ज्ञान देते हैं किसी को, ये इच्छा के साथ, हृदय में इच्छा भी होनी चाहिए कि आप लोगों को भगवान के ज्ञान से लाभान्वित करना चाहते हैं, उनका उनका लाभ कराना चाहते हैं, आप आपके हृदय में तीव्र इच्छा है कि ये लोग आपकी अर्थात भगवान की जो बात है उसको सीखे समझे और भक्त बने, तो ये सारी चीज मैटर करती है कि आप प्रीचिंग कैसे करते हैं। कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं केवल इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु ने बोला है, कुछ लोग प्रीचिंग इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनके पास कुछ होना चाहिए सेवा, इसलिए प्रीचिंग करते हैं, उसमें प्रीचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों के कंपटीशन में अपने आप को स्ट्रगल ना करना पड़े कि भाई और कोई मेरे से आगे चला जाएगा। कुछ लोग प्रीचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसको मटेरियल बेनिफिट प्राप्त होता हो कि भाई मुझे यहाँ से ये लाभ मिलेगा वो मिलेगा। तो ये सब जो बेकार के जो रीजन होते हैं उद्देश्य होते हैं प्रीचिंग के, ये आपको वास्तव में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपको अगर प्रचार करना है तो यथारूप ज्ञान यथारूप भाव से प्रस्तुत करने में ही आप प्रचार कर पाएंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि मनुष्य चाहे कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वो कृष्ण भावना मृत का प्रचार अवश्य करेगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसके पास, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है अगर वो प्रचार नहीं करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको पता ही नहीं है कि भक्ति क्या है। नहीं तो अगर जो भक्त शरणागत होता है वो प्रचार ना करे ये तो संभव ही नहीं हो सकता। कम से कम वो प्रयास तो करेगा अवश्य, और ये जो प्रयास है प्रचार करने का जो एक छोटा, भले आपको ज्यादा हमें ज्यादा नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास भी अगर वो करते तो भगवान उसको अपनी सबसे उत्तम सेवा के रूप में एक्सेप्ट करते। अगर आपको ऑपोजिशन भी प्राप्त हो, देखो आप प्रचार शुरू करोगे तो आपको ऑपोजिशन आएगा, ये गारंटेड है। आप इसको यही सोच के चलो कि ऐसा होगा, ये लिख लो पेपर के ऊपर कि आप जैसे प्रचार करोगे आपका विरोध होगा, आप अधिक प्रचार करोगे तो आपका अधिक विरोध होगा, और अधिक प्रचार करोगे तो आपके अपने लोग ही आपको परेशान कर सकते। इसलिए इन सब चीजों को पहले से प्रिपेयर ही रहना चाहिए कि प्रचार करोगे तो माया चुनौतियां देती रहेगी, तो इन चुनौतियों का सामना करते करते फिर भी मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और इसी तरह से वो सर्वश्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। जो जिसने आत्मा का, जिसने एक बार भगवान की भक्ति का महिमा चख लिया है, जिसने एक बार कृष्ण भक्ति का स्वाद चखा है, वो एक कोने में बैठ करके अकेला नहीं बैठ सकता, वो प्रचार करेगा ही करेगा। जैसे रामानुजाचार्य का एग्जाम्पल है, ऐसा माना जाता है कि रामानुजाचार्य ने उनको, उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया था और कहा था कि बेटा ये मंत्र है, सीक्रेट मंत्र है, किसी को नहीं बताएगा, महामंत्र बताएगा, हरे कृष्ण मंत्र। तो ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बताने का, ओके। रामानुजाचार्य बोले यस ओके, नहीं बताएंगे इसको गुरु। बाद में क्या हुआ, वो पब्लिक प्लेस में जाकर के, जैसे कोई चौराहा वैसे छत पे जाकर कैसे ऊपर चढ़ करके जोर से चिल्ला करके बोलना शुरू कर दिया कि मैं आप सबको एक सीक्रेट मंत्र बताता हूँ, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, और पूरा मंत्र उन्होंने बताया। तो उनको उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो महामंत्र है, ये सब सबके लिए होना चाहिए। जैसे प्रॉपर एक एग्जांपल दिए थे कि भारत के कई योगी अमेरिका जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको प्राइवेट मंत्र देंगे, अपने लेक्चर्स देते हैं, फिर कोई देखते कि जिसके पीछे कोई ऐसे लोग आते हैं, उनके पास अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जेब गर्म होती है, तो देखते कि उनके पास धन है, तो बोलते कि ऐसे में किसी को देता नहीं हूँ लेकिन तुम स्पेशल आदमी हो इसलिए मैं तुम्हें प्राइवेट मंत्र दूंगा। तो ये प्राइवेट प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ी फियर्स यानी पावर, अगर वो पावरफुल मंत्र है देन वाई शुड ही बी प्राइवेट, प्राइवेट रखने का क्या फायदा। इफ अ मंत्र इज पावरफुल देन वाई नॉट एवरीवन कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, सबको उसका फायदा होना चाहिए ना। सो भगवत हरे कृष्ण मंत्र कैन सेव एवरीवन, इसलिए हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मूर्ख इतने हैं, लोग इतने मूर्ख हैं कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन लोग को ये सीक्रेट मंत्र चाहिए जो $35 या $50 में ये प्राइवेट मंत्र देगा, इस प्रकार के लोग चाहिए। लोग चाहते हैं ऐसा कि उनको धोखा दिया जाए, हम फ्री में दे रहे भगवान का नाम तो वो उनको नहीं चाहिए, वो प्राइवेट मंत्र के लिए लाखों रुपया खर्चा करेंगे और प्राइवेट मंत्र प्राप्त करेंगे। Prabhupada said that, come on, take it, but under the spell of Maya, people are thinking, oh, this is not good. But if you charge something and bluff and cheat, they will follow you. तो इसलिए भक्तों को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए और सबको ये आंकना चाहिए. फिर एक जगह प्रभुपाद ने ऐसा भी बताया था कि श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में दक्ष नारद का जो बात आता है, जिसमें नारद को शाप दिया जाता है दक्ष के द्वारा कि तुम एक स्थान में 3 दिन से अधिक नहीं रह पाओ, मेरे को प्रचार कर रहे. सो प्रभुपाद उसके विषय में कहते हैं कि सारे जो भक्त होते हैं भगवान के, वो बद्ध जीवात्मा के प्रति बहुत दयालु होते हैं और उनका इच्छा होता है कि सबका उद्धार हो. जैसे आप प्रचार करना शुरू करते हो, आपके शत्रु बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, और आपको आपकी मित्रता जो होती है वो तोड़नी पड़ती है. क्यों? क्योंकि लोग आपका विरोध करना शुरू करते हैं, लोग आपकी निंदा करना शुरू करते हैं. तो जो नारद मुनि की सेवा में जुड़े हुए परंपरागत भक्त है, अर्थात हम लोग, उन लोग को भी इस प्रकार की निंदा का सामना करना पड़ता. कि हम लोग जवान लोगों को भक्त बनाने का प्रयास करते हैं और उनको भगवत धाम वापिस भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी इस सेवा को ना भारत में कोई सराहना करता है और ना ही विदेशों में कोई सराहना करता है. भारत में जाति ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो कृष्ण भावनामृत के शत्रु बन गए हैं. लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग विदेशियों को बिना किसी योग्यता से, विदेशियों को, यमलेच्छ यवनों को हम ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण की पोजीशन दे देते हैं. हम उनको तपस्या सिखाते हैं, उनको शुद्ध ब्राह्मण जीवन सिखाते हैं और जनोई देते हैं. लेकिन कास्ट ब्राह्मण जो है, जाति ब्राह्मण, वो इससे बहुत नाराज है. और पश्चिम के देशों में भी हमने देखा है कि लोग नाराज है. क्यों? क्योंकि जो लड़के लड़कियां कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं, उनके माता पिता हमारे शत्रु बन जाते हैं. हम शत्रु नहीं बनना चाहते किसी को, लेकिन जो नॉन डिवोटीज होते, जो भक्त नहीं होते हैं, वो हमारी तरफ शत्रुता का भाव रखते हैं. इसलिए शास्त्र में ऐसा बताया है कि भक्त जो होता है वो सहनशील होता है और दयालु भी होता है. इसलिए जो प्रचार के सामने जुड़ता है, उनको अज्ञानी लोगों के द्वारा निंदा करने पर उसको परेशान नहीं होना चाहिए, वो बहुत दयालु होना चाहिए. और नारद मुनि जिस तरह से चले, उस तरह से चलना चाहिए. एक्चुअली आप जब भी हम प्रचार करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रचार करने वाले भक्त को क्षमा करना सीखना चाहिए. क्योंकि अगर वो क्षमा करना नहीं सीखेगा तो परिणाम यह आएगा कि वो प्रचार कर ही नहीं पाएगा. जैसे आप समझो कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो भक्ति के मार्ग में भी, तो आपको क्षमा आप हमेशा अपने एक पॉकेट में भर करके या थैले में भर के अपने बैग में साथ में रखना पड़ेगा क्षमा, और सबको बांटना पड़ेगा क्षमा. क्योंकि बहुत लोग आपकी निंदा करेंगे और बहुत लोग आपका विरोध भी करेंगे, और बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो आपको कष्ट देगी, लेकिन हमें क्षमा को पकड़ कर रखना पड़ता है. और साथ साथ दयालु, दयालु का अर्थ क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति पूरी तरह से डिस्क्वालिफाइड, उसको कोई लाभ कृष्ण भक्ति देने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, उल्टा वो तो आपको पत्थर मार रहा है, वो आपके पीछे गालियां दे रहा है, ऐसा आपका निंदा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी दया करना, ऐसे व्यक्ति को भी ग्रीवा बांटना. तो दया और सहनशीलता, सहनशीलता भी बहुत बड़ी चुनौती होती है भक्तों के लिए कि आप सहन कर सकते हो. कई बार होता है ये, आपको लगता है कि नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम, हम लोग कुछ भी सहन कर सकते हैं, हम लोग मोटी चमड़ी गए. नहीं, आप कितनी भी मोटी चमड़ी के हो, लेकिन जीवन में सहनशीलता की परीक्षा होती है, और वो परीक्षा आप पक्की पार अगर नहीं कर सकते तो गुरु और वैष्णव की सहायता से पार करो. लेकिन सहनशील होने के लिए हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, तभी हम प्रचार कर पाएंगे, नहीं तो प्रचार नहीं कर पाएंगे. बड़ी बड़ी चीजों को भी सहन करना सीखना चाहिए. जो ये सुप्रीम सीक्रेट, ये रहस्यमय भगवत गीता का जो रहस्यमय ज्ञान है, वो औरों तक पहुंचाता है, भगवान कहते हैं कि उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। तो भगवान के भक्तों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक इस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। और इसके आगे तात्पर्य में प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि बिकॉज नारद मुनि एंड द मेंबर्स ऑफ हिज डिसिपल सक्सेशन डिस्टर्ब फ्रेंडशिप एंड फैमिली लाइफ, दे आर सम टाइम एक्यूज्ड ऑफ बीइंग सहुर गृहम, लोगों में शत्रुता जन्म कराने वाले। सो प्रीचिंग कैन बी डिफिकल्ट एंड इट थैंकलेस टास्क, बट अ प्रीचर मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड अनअफ्रेड ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन्स। इसलिए भक्त को जो भी समस्या आती है, हु इज फेसिंग डेंजर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, इज क्विकली रिकॉग्नाइज बाय कृष्ण। जो लोगों जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने जो अपने और से रिस्क लेता है या जो डेंजर लेता है, जो सब प्रकार की एक सोल्जर की तरह वो युद्ध करने के लिए मैदान में आता है, उसको भगवान के द्वारा रिकॉग्निशन प्राप्त होता है। कृष्ण का मुख बन करके वो लोग प्रचार करते हैं और लोगों को कृष्ण भावना में होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट सोल्जर्स, ये लोग बहुत बड़े सोल्जर्स है। इसलिए फिर प्रभुपाद कहते हैं लेट अस डेडिकेट दिस लाइफ फॉर प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेवर माइंड वी डाई बाय प्रीचिंग, स्टिल इट विल बी ग्लोरियस। कुछ इसका चिंता मत कीजिए कि क्या होगा, कोई आपका हत्या कर देगा, कोई आपका नहीं। यू प्रीच नेवर माइंड वी डाई, इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि आप अपने शरीर का अपनी क्षमता का पूरा गिव 150%, गिव 200% ऑफ योर कैपेसिटी, 100% नहीं 200% ऑफ योर कैपेसिटी, इतना आप दे दीजिए भगवान की सेवा के लिए, प्रचार करने के लिए। एंड नो मैटर यू डाई, प्रभुपाद यूज्ड टू से डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू सर्व टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। तो कृपा करके भगवान कृष्ण के लिए स्ट्रगल करने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो सौभाग्य मुझसे मत छीनिए, ये प्रभुपाद बार बार कहते थे। तो इसलिए वी हैव टू ऑफर अवरसेल्फ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट अस, यू नो, व्हिच वेल वी व्हाइल प्रीचिंग वी हैव टू फेस ऑल डिफिकल्टीज, सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो नाउ टेक्स्ट नंबर
क्वेश्चन बोलिए। अब आपने बताया कि मतलब हमें अगर हमें टॉलरेंट बनना है और कोई भी निंदा करे तो हमें सहन करना है, मगर अगर भगवान या भगवान के भक्त या संस्था की या गुरु की अगर कोई निंदा करता है या मतलब वो फेवरेबल नहीं है तो उनको प्रचार नहीं करना चाहिए या व्हाट?
भक्त जो होते हैं वो एक्सपर्ट होता है, जैसे वो देखते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कि वो व्यक्ति अपने, वो भक्त जो होता है वो अपनी अनुभव की बुद्धि से वो समझ सकता है कि ये व्यक्ति को अगर ये दवाई दी जाएगी तो शायद वो सुधर सकता है। इसलिए वो रिस्क लेते हैं कई बार, लेकिन वो चेक करते हैं कि इसको कौन सी दवाई दी जाए। लेकिन जब उसको भक्त को विश्वास हो जाता है कि इसको मेरे बस की बात नहीं है इसको भक्त बनाना, या मुझसे नहीं हो पाएगा, इससे ये और गलतियां करेगा और अपराध करेगा, तो फिर वो उसको प्रचार नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कृष्ण का निंदा करते हैं, लेकिन भक्त को पता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। एग्जाम्पल के रूप में कई बार देखा है कि कोई कृष्ण का विरोधी होता है, लेकिन वो भक्त का आचरण इतना स्वीट होता है कि वो भक्त का तो जैसे फैन हो जाता है। वो सोचता है कि ये आदमी स्पेशल है। ऐसे बहुत प्रभुपाद के साथ बहुत हुआ था ऐसे, तो भगवान को मानेगा नहीं मानेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रभुपाद को जरूर मानता ऑफकोर्स फिर धीरे धीरे फिर भगवान को भी मानना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हमारा आचरण इतना नंबर वन होना चाहिए कि लोग जो है वो कृष्ण को माने या नहीं माने, आपको जरूर मानेंगे, और फिर आप कहोगे तो धीरे धीरे फिर वो कृष्ण को भी जरूर मानेंगे। तो इसलिए टीचर्स आर एक्सपर्ट, समटाइम्स दे लिसन क्रिटिसिज्म जस्ट टू सर्व कृष्ण। सो दैट इज दैट ग्रेट सर्विस टू द लॉर्ड। इसलिए जो निंदक होते हैं, और हमारा अगर कमजोर भक्त है तो हमें तो अवश्य ही पहले ही दिन से दूर चले जाना चाहिए जो निंदा करने वाले हैं उससे। लेकिन जो अनुभवी है, जो सहनशील होते हैं, जिनका श्रद्धा एकदम दृढ़ है और उनको पता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, उनके पास भगवान और गुरु का कृपा है, ऐसे व्यक्ति को समझदारी से काम लेकर के प्रचार के लिए अगर छोटे बड़े छोटे मोटे रिस्क लेने पड़े तो लेने चाहिए।
ओके प्रभु, प्रभु एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि मतलब हम जैसे किसी भक्त को प्रचार करते हैं, फिर वो मतलब कुछ समय के लिए मतलब वो कंटिन्यू रहते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं फॉर नो रीजन। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वापस भी आते हैं अपने ही मतलब हम मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं 2-3 महीने से उनके कॉन्टेक्ट में रहा हूँ, उनको मैंने मतलब I tried following up with them, और फिर भी वो मतलब कुछ नहीं हुआ, और फिर उसमें से कुछ वक्त ऐसा है जो वापस भी आते हैं, कुछ वक्त बिल्कुल ही चले जाते हैं। तो मतलब कैसे जज करें और हाउ टू रिएक्ट?
सी, ये जो इंडिविजुअल केस के साथ अलग अलग होता है, हर एक का केस अलग अलग होता है। एक सेकंड, तो तो ये इंडिविजुअल केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कुछ समय के लिए चला क्यों गया था, ये एक मैटर होती है, उसको चेक करना पड़ता है। दूसरा होता है कि क्या हमने उनको वैरायटीज नहीं दी, क्योंकि सब लोग अलग अलग विचार के होते हैं, कुछ लोग को वैरायटीज चाहिए, कुछ लोग को ड्रामा एक्टिविटीज, इस तरह से अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज चाहिए प्रचार के टाइम पे, तो ये एक भी तरीका है। और दूसरा, जब वो वापस आते हैं तो हमें उनको वेलकम भी करना चाहिए। कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर कोई भक्त 2-4 महीने तक 6 महीने तक अगर ओझल हो गया, गायब हो गया, तो फिर उसको वापस आने, भक्त लोग ही वापस नहीं आने देते उसको, वो हमने देखा है। वो क्योंकि वो आएंगे, आने के साथ ही उसके ऊपर टूट पड़ते कि कहाँ चला गया था, क्यों चला गया था, अरे प्रभु जी बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए तुम्हारे, ऐसे ऐसे टॉन्ट मारेंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, वो इतना एम्बेरेसिंग सिचुएशन करेगा कि वो आना ही बंद कर देगा। और ये कॉमन है, ये मैंने देखा है, ये कॉमन होता है। भक्त अधिकतर इसलिए वापस नहीं आना चाहते कि अब लोग मुझे सब टॉन्ट सुनने पड़ेंगे सबके। तो ये सब इमेच्योर, जो कमजोर, जो अपरिपक्व भक्त होते हैं, ये इस प्रकार से बिहेव करते हैं। सो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अगर कोई भक्त 100 बार चला गया वापस, और 101वीं बार अगर वापस आए, तो उस समय भी हमें उसको पूरा आश्रय देना चाहिए, उसको शरणागति के लिए प्रयास करना चाहिए, वो भक्त बनता है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए।
थैंक यू प्रभु।
मोर क्वेश्चंस? सो प्रेमिलास प्रभु, आप मुझे लगता है कि सबकी ओर से क्वेश्चन आज आप ही पूछ रहे हो, या फिर सब लोग आपको इंडिविजुअल देते होंगे? दे आर गिविंग यू पर्सनल प्राइवेट मैसेज में प्रश्न पूछते क्या?
हरे कृष्ण।
हाँ,
यस, प्रभु आपने बोला कि वो भक्त वापस चला जाता है फिर वापस आता है, तो उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? यानी आपने बोला कि इस तरीके से शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो किस तरीके से उसको समझाना चाहिए कि
उसको
वापस आवे? तो
उसको इस तरह से समझाना चाहिए कि सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। इस तरह से अगर कोई उस समय के लिए चला गया है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, वो मानो दो चार महीना कहीं गया ही नहीं। और उसके कोई भी कड़वाहट वाली कोई बात जो पहले बनी हुई है 6 महीने पहले या कभी भी, उस बात जैसे हमारे हिस्ट्री में ऐसी कुछ बात हुई नहीं है, इस तरह से उसको पूरा कंफर्ट देना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत ही कंफर्टेबली कृष्ण भक्ति में फिर से आ जाए, उसको पूरा कंफर्ट देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको हम सहन करते रहते, सहन अवश्य करते हैं, लेकिन जब आगे जाकर के हमें जब मौका मिलता है तब फिर हम उसको समझा देते हैं कि तुमने पास्ट में इस तरह से तुम चले गए थे, अब ऐसा मत करना। वो हम बाद में उनको सिखाते, लेकिन शुरुआत में तो वो एक बच्चा जैसा है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको उसको कैसे भी करके कृष्ण भक्ति में जोड़ना पड़ता है। इसलिए उसको ऐसा कुछ भी बोलना भी नहीं है, या हमारे आसपास में बाकी सब भक्तों को भी बोलना चाहिए कि हमें ऐसे भक्तों का स्वागत कैसे करना चाहिए। नॉट दैट कि वी विल अटैक ऑन हिम, नहीं, उनका आक्रमण करेंगे ऐसा नहीं होना, उनको नॉर्मल फील कराओ और उनको ऐसा ही फील कराओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब जाके वो फिर धीरे 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 कृष्ण भक्ति को आसानी से ग्रहण कर पाएगा। हाँ, तो और भी प्रश्न थे भक्तों के, पूछिए। प्रचार को लेकर के
तो मेरा एक क्वेश्चन है,
आपका ही है या किसी और ने आपको प्राइवेट मैसेज में दिया है?
नहीं, मेरा ही है।
ओके।
वो मतलब हम काफी बार ऐसे देखते हैं कि एक स्पाउस कृष्ण कॉन्शियस भक्ति में जुड़े होते हैं, मगर उनके मतलब हस्बैंड या वाइफ वो मतलब इतने फेवरेबल नहीं होते हैं, और ये मतलब हम सभी भक्तों का अनुभव है, तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो इसमें मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे आउट?
सॉरी, मैं पहला पार्ट मिस कर गया।
मैं ये पूछ रहा था कि एक स्पाउस मतलब एक हस्बैंड या वाइफ भक्ति में जुड़े हैं, मगर द अदर पार्टनर या तो हस्बैंड या वाइफ वो जुड़े नहीं है, और वो आते हैं प्रोग्राम में, वो सब कुछ माला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट वो भक्ति में नहीं है, तो इसलिए मतलब हमें तो ऐसा ही चाहिए, हम परिवार को जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे आउट?
परिवार के जो सदस्य है जो भक्ति में रुचि रखते हैं, जैसे समझ लो कि वाइफ इंटरेस्टेड है और हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं है, या हस्बैंड इंटरेस्टेड है और वाइफ इंटरेस्टेड, तो हमें पहले तो जो इंटरेस्टेड है उसको बहुत अच्छे से उनको केयर करना चाहिए। दूसरा, वो जो इंटरेस्टेड भक्त है उनको ये सिखाना चाहिए कि घर के सदस्यों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करे, इतना अच्छा व्यवहार करे कि जो कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले भी नहीं करते थे, इतना अच्छा व्यवहार करे। और ट्राई टू बिकम अ गुड वाइफ, गुड हस्बैंड, गुड चिल्ड्रन, एंड एट द सेम टाइम कभी किसी को फोर्स ना करे, नेवर फोर्स एनीबडी इन द फैमिली, फैमिली में किसी को फोर्स नहीं करे, और उनको इंस्पायर करे अपने आचरण के द्वारा। और अगर उनको कभी कुछ संदेश दिलवाना भी है तो वो दूसरे किसी के द्वारा दिलवाना चाहिए, खुद से नहीं दिलवाना चाहिए। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं मेरी बात को ये लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, तब फिर धीरे 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 करके उनको प्रीचिंग कर सकते। जनरली कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में गुस्सा में आता है, दूसरे दिन ओए तुम तो माया में फिर रहे हो, तो सामने वाले बोले अबे पूरा जिंदगी तू माया में था उसका क्या। तो इसलिए ये सब कमजोर लोग होते हैं, उसका ये दुष्परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर ऐसा हो तो डिवोटी शुड बी वेरी जेंटली बिहेविंग एंड नेवर फोर्सिंग एनीबडी एंड ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द फैमिली मेंबर्स। वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इवन दो दे आर नॉट डिवोटीज, बट यू अप्रिशिएट देम, अप्रिशिएट देयर गुड क्वालिटीज एंड ट्राई टू बी अ गुड फैमिली मेंबर, एंड दिस वे दे विल बी इंस्पायर्ड बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट।
थैंक यू।
और कोई प्रश्न? यस, पूछिए। हरेश, आप पूछ रहे थे ना कुछ? निधि, आप पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? अच्छा, nobody is asking. ये एक बस ये ऑनलाइन टीचिंग में यही एक समस्या आती है कि प्रश्न नहीं पूछते था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी इट इज गोइंग गुड. एवरीबॉडी शुड आस्क क्वेश्चंस. ओके नाउ अनदर फेमस श्लोक टेक्स्ट नंबर 69. अच्छा मेरी आवाज पहुंच रही है क्या सब तक?
आज जगत में सेना करता अन्य कोई सेवक मने वधारे प्रिय नथी अने कदी वधारे प्रिय थसे पण नहीं.
अब भगवान यहाँ पर बता दिया कि उससे अधिक कोई प्रिय ना कभी हुआ है और ना कभी होगा. कौन? जो मेरे प्रचार संदेश को, भगवद गीता के संदेश को औरों तक बांटता है, जैसे प्रचार करता है, भगवद गीता का प्रचार करने वाला भक्त होगा, सबसे उत्तम कैटेगरी का भक्त माना जाता है, बेस्ट इन ऑल. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये प्रचार के लिए आप इतना बल क्यों देते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रचार के लिए रुचि नहीं होती, कुछ लोग को केवल माला करने में रुचि होती है. अगर आप उनको बोल दो कि 16 माला करना है और 2 घंटा भागवत पढ़ना है तो उनको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है. जब उनको प्रचार की बात आती है तो उनको लगता है कि ये हमसे नहीं होगा. प्रॉपर एग्जाम्पल देते थे कि वो सरस्वती महाराज को बहुत अगेंस्ट में थे, वो एक मठ खोल देगा और 2-4 कमरे होंगे उसके अंदर, 2-4 लोग उसके पास आएंगे और एकांत में बैठ के जप करेगा, सब उसको दक्षिणा देंगे और फिर उसको कोई जिंदगी नहीं, खाएगा दूर ना और सोता रहेगा और उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, लोग मेरी पूजा करना शुरू कर. तो ऐसा ये इस प्रकार के लोग भगवान भक्तिदान सरस्वती एक्सेप्ट नहीं करते. इफ नो प्रीजिंग नो बॉदरेशन, अगर प्रचार नहीं करते हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप प्रचार करते हो तो समस्या आती है. तो कुछ लोग समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसलिए प्रचार से हिचकिचाते हैं. कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहे तो वो प्रचार करना प्रभु इतना भेजा मारी है, इतना झंझट है, क्या क्या. मैं तो सोचता हूँ अपने जितना हो सकता है उतना करे और ज्यादा इससे ज्यादा क्या कर सकता है. ठीक है, लेकिन प्रचार करने के लिए जो कोई कठिन परिस्थिति आती है उसका सामना करना चाहिए, इससे स्टेप बैक नहीं करना चाहिए. क्योंकि हम आलसी है, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम इतने अभिमानी है कि हम भगवान का शरणागत नहीं होना चाहते, हम इतने उत्साह हमारा इतना चला गया है कि हमें प्रचार करने का भी उत्साह नहीं आता है. तो ये सब समस्या होती है इसलिए क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आ रहे हैं. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने किसी वैष्णव का अपराध किया है, ये इसलिए सब हो रहा है क्योंकि हमने गुरु के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए ये सब विकार हमारे मन में आते रहते हैं और इसका ही परिणाम है कि हम लोग प्रचार से इंटरेस्ट चला जाता है. तो एक प्रकार का भक्त होता है गोष्ठ्यानंदी. गोष्ठ्यानंदी का अर्थ होता है कि प्रचार करता है और भक्ति भी करता है. और एक होता है बजरानंदी. बजरानंदी क्या होता है, उसको एक पीपल का पेड़ दे दो या व्हाटएवर दे दो, बस वो आराम से बैठ के रोज की 64 माला जप कर सकता है. या फिर उसको वो ऐसा सोचेगा कि मैं वृंदावन में चला जाऊं, किसी पेड़ के नीचे बाबा जी बन जाऊं. तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इसको मना किए हैं, डोंट ट्राई टू गो देयर. और हरिनाम केवल कई तब दुष्ट मन में किसी वैष्णव अविद्या तब हरिनाम केवल कैतव. ये दुष्ट मन, तुम किस प्रकार का वैष्णव हो? अविद्या के तरह माया कारण निर्जने रगरे, आप एकांत में बैठ करके, लेकिन तुम्हारा जो भजन है वो तो केवल ढोंग है. कैतव स्ट्रिक्टली सेइंग प्रतिष्ठा के लिए तुम प्रतिष्ठा शुक्र है रविष्ठा, तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वो तो सुअर की मल, सुअर का मल बराबर है, क्या करने का तुम्हारी प्रतिष्ठा। इसलिए एक रिजेक्ट किया गया है चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग जो जुड़े हैं। और वैसे भगवान खुद भी, भगवान नहीं कहते नहीं अर्जुन अब ठीक है अभी युद्ध करना है इसलिए कर ले, लेकिन बेस्ट तो यही है कि तू तो किसी भी ये कुरुक्षेत्र में कोई पेड़ ढूंढ ले। नो, कृष्णा वांट्स दैट यू प्रीच, सो नजर दस्मान मनुष्य, उससे अधिक प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। यू नो समटाइम कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले भक्त होते हैं, उनका भी ईर्ष्या करते हैं कि केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही सर्वश्रेष्ठ थोड़ी होता है, ये भी होता है वो भी होता है। यस, ऑल आर प्रीचिंग एक्टिविटीज, बट यू शुड बी केयरफुल। जस्ट लाइक So, प्रभुपाद का एक लेक्चर में कहते हैं कि जो कृष्ण की पूजा करते हैं, जो कृष्ण का प्रचार करते हैं, वो कृष्ण उसको अपना पूजनीय मानते हैं। जो भगवान के गुणों का प्रचार करते हैं तीनों जगत में, सारे संसार में, वो भगवान के लिए भी वो लोग पूजनीय बन जाते हैं। The Brahmanas, by their preaching, sanctify the three worlds with the lotus feet, dust of lotus feet. भक्त होते हैं वो अपने प्रचारक, भक्त अपने चरण धूलि से सारे तीनों लोक को प्रचार उद्धार कर देते हैं। So they are worthy people even by Krishna also. Krishna के द्वारा भी वो लोग पूजा के योग्य हो जाते हैं। I mean, Krishna के, Krishna wants to worship them. This is the relationship of reciprocal. ब्राह्मण या वैष्णव कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं और कृष्ण वैष्णव की पूजा करना चाहते हैं। सो दिस इज रिसिप्रोकल, अर्थात भगवान, अगर आप देखिए राधा रानी का कोई सबसे प्रिय भक्त कौन सा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ना कि जो कृष्ण का गुणगान सब जगह प्रसारित करे। इसका प्रमाण गोपी गीत में प्राप्त होता है, तब कथामृतम तप्त जीवन। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य कथाओं को लोगों तक पहुंचाता है, तप्त जीवन, ऐसे जीवो तक कि लोग जो जल रहे हैं, ऐसे जो जीवो तक पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति भूरीदा जाना सबसे उदार व्यक्ति माने जाते हैं, सबसे उदार व्यक्ति माने जाते हैं, देयर द हाईएस्ट मैग्निफिसेंट पीपल। इसलिए भगवान भी उनके चरण की रज अपनी। प्रभुपाद यूज्ड टू से अगर आप एक अमेरिकन को भक्त बना सकते हो, एक अमेरिकन को भक्त बनाओगे तो आपकी चरण की धूली में अपने सिर पे लूंगा। प्रभुपाद यूज्ड टू से लाइक दिस, सो इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद इसको, यहाँ तक कि जो प्रचारक भक्त होता है, जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त, प्रचारक भक्त होते हैं, अगर वो जहां जहां चलते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। अगर वो कीर्तन करते समय अगर हाथ ऊपर उठाते हैं तो ऊपर के साथ लोग पवित्र हो जाते हैं। एंड इट्स सो पावरफुल देयर प्रीचिंग इज, एंड देयर, इसलिए द प्रीचर डिवोटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवोटी फॉर कृष्ण, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवोटी। ये बहुत ज्यादा भगवान का प्रिय भक्त होता है, इज द सेनापति भक्त, इज द कमांडर इन चीफ, इज फाइटिंग फॉर कृष्ण इन द फ्रंट हैंड, वो सेनापति भक्त है। इसलिए प्रचार करने वाला भक्त जो होता है वो उससे अधिक आगे ना कोई प्रीचिंग, ना कोई प्रिय भक्त बनेगा और ना पाशना कभी हुआ है। अभी आप कहेंगे प्रभु ये तो सुनने में तो बड़ी अतिशयोक्ति लग रही है कि प्रचार, अगर हम लोग प्रचार करेंगे तो हम भी प्रिय हो जाएंगे। ऑफ कोर्स आप भी प्रिय हो जाएंगे, अगर आप प्रीचिंग करोगे तो आप भी प्रिय हो जाओगे, और इसलिए कृष्णा आपको तुरंत रिसिप्रोकेट करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड जो प्रचार करता है अधिक अधिक से अधिक प्रचार करता ही जाता है ऐसा व्यक्ति कृष्णा को इतना प्रिय होता है, जैसे भगवान खुद बताते हैं, प्रभुपाद खुद बताते हैं कि कृष्णा पर्सनली केम टू टेल हिम, जब वो जलदूत में थे तब पर्सनली कृष्णा आए सारी गुरु परंपरा को साथ में लेकर के, एंड ही सेड दैट यू गो, तुम प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ, आई एम एंड विद यू. सो दिस इज स्पेशल बेनेडिक्शन. आप इसकी गहराई को हम लोग शायद अभी नहीं समझ सकते कि जो प्रचार करने वाले भक्त होते हैं कृष्ण के लिए वो क्या है, लेकिन जैसे 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 हम आचार्यों के जीवन को देखेंगे, प्रभुपाद के जीवन को देखेंगे, भक्तों को देखेंगे जो प्रचार उपाय में जुड़े हैं, तब हम समझ पाएंगे कि प्रचार करने वाले भक्त कृष्ण के लिए क्या है. क्या है सताम निंदा, जो जिन लोगों ने भगवान के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसे लोगों की निंदा करना भगवान नाम के अपराध में पहला अपराध है. द फर्स्ट ऑफेंस, दिस इज गिवन टू बी द फर्स्ट ऑफेंस. इसलिए वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू प्रीच एंड वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस सर्विस, ऑफ प्रीचिंग सर्विस. प्रचार करने वाला भक्त बहुत स्पेशल होता है. ओके, अब भगवान के कुछ घोषणाएं हैं, सुनिए.
क्वेश्चन प्रभु.
यस
प्रभु, जैसे आपने बताया भजनानंदी कोष्णानंदी, तो जैसे मेरे अनुभव में कुछ भक्त है, जैसे आप भी जानते हैं उनको, मगर जैसे कुछ भक्त ऐसे हैं कि जैसे उनमें समहाउ ऐसा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जैसे उनको एक सेवा मिली है और उनको वही सेवा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब कोई छोटा सा एकदम सेंटर है और वहां पे और कोई पुजारी है ही नहीं, तो पूरा जिम्मेदारी उन पे है, तो अगर वो करना चाहे प्रचार तो भी उनके पास समय नहीं है, स्कोप नहीं है गुरु की आज्ञा या टेम्पल अथॉरिटीज, तो इन दैट केस दैट इज फर्स्ट एक प्रभु ये क्वेश्चन है. और दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त होते हैं जो डायरेक्टली प्रचार में हेल्प नहीं करते, मतलब इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे कोई बुक मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कार ड्राइव करते हैं, या कोई कोई प्रीचिंग हमने प्रोग्राम किया उसमें सेटअप करते हैं या प्रचार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो मतलब वो मेरे मेक श्योर के वो मतलब जो भी प्रीचिंग का पूरा प्रोग्राम है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो भगवान की नजर में सब सेम ही हुए प्रभु, राइट? सो जस्ट ये दो क्वेश्चन है.
सो सेकंड क्वेश्चन का अगर आंसर ले तो चाहे कोई डायरेक्ट प्रीचिंग करता है या चाहे कोई इनडायरेक्ट प्रीचिंग करता है, तो दोनों को भगवान एक रूप से ही देखते हैं कि, लेकिन डायरेक्ट प्रीचिंग करने वाला जो भक्त होता है उसमें जिम्मेदारी ज्यादा होती है और इसलिए उनकी सेवाएं भी ज्यादा होती है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रीचिंग करने वाले भक्त भी धीरे 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 डायरेक्ट प्रीचिंग वाले भक्त की संगति करके उन लोग को भी डायरेक्ट प्रीचिंग करने की इच्छा हो सकती है. हो सकता है कि वो इतने विद्वान ना हो सकता है कि वो उनकी कुछ लिमिटेशंस हो, लेकिन उनकी जो इनडायरेक्ट प्रीचिंग करने की जो उत्साह है वो 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो प्रचार करने वाला भक्त है वो उसको मैं सहायता कर रहा हूँ, और ये उत्साह उसका निरंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता चाहे कम हो लेकिन उसका उत्साह तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रीचिंग करने वाले जैसा ही होता है. तो ये है. और पहला वाला जो क्वेश्चन था जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सेवा को लेकर के या तो फिर टेम्पल अथॉरिटी ने बोला है या व्हाट एवर रीजन या जैसे पुजारी है, तो हमने ये देखना चाहिए कि समझ लो कि एग्जांपल के रूप में एक पुजारी है, तो पुजारी इसलिए पूजा का कार्य कर रहा है क्योंकि उसको टेम्पल अथॉरिटी या गुरु के द्वारा आदेश दिया गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रचार नहीं कर सकता, अगर वो प्रचार करना चाहे तो अवश्य कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ये जन निवास स्वरूप पंकजांगे प्रभु, वो प्रभुपाद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा गया था उनको कि आप पूजा का काम करो, अगर वो लोग प्रचार नहीं करेंगे तो उनका गुरु आज्ञा नहीं होने वाला, क्योंकि उनके गुरु जी ने उनको ये आदेश दिया था कि तुम ड्यूटीज की सेवा करो, लेकिन वो ड्यूटीज की सेवा करते हैं लेकिन वो भक्त रह नहीं पाते, वो प्रचार करते ही है, तो देयर ऑल्सो कंसिडर टू बी वेरी ग्रेट प्रीचर्स इन इस्कॉन. इसलिए जो भक्त लोग वास्तव में प्रचार करना चाहते हैं उनको कोई रोक ही नहीं सकता है, यूनिवर्सिटी भी नहीं रोक सकती, उनको कुछ रोक नहीं सकता, दे विल प्रीच। प्रीचिंग मीन्स टू हेल्प अदर्स टू कम बैक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये प्रीचिंग का अर्थ यही होता है। तो इसलिए प्रचार, अगर कोई भक्त है वो प्रचार नहीं करना चाहता तो वो अलग बात है, फिर उसके लिए आप कोई भी बहाना बना सकता है कि गुरु का देश है, ये है, वो है, फलान दिखा, व्हाटएवर, लेकिन वो प्रचार खुद नहीं करना चाहता, वो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि ऐसा भक्त होता है वो आगे जाके अपना उत्साह मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका शंका लगाइए, गारंटी नहीं है।
प्रभु एक दूसरा छोटा सा कमेंट ये था कि जैसे एक कमेंट नहीं क्वेश्चन ही है कि जैसे हमारा ये भाव भी ऐसा होना चाहिए ना, जैसे अमोक लीला प्रभु ने लेक्चर में बताया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे कि जैसे उन्होंने वो एग्जांपल दिया है दीवार का कि हम अगर किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हमने दीवार, मतलब वो दीवार के अंदर दरार कर दिया है, और अगर बुक चली जाती है तो हमने तो कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ दीवार गिराई है, मतलब दरार तो ऑलरेडी पहले थी। सिमिलरली अगर हम किसी को प्रचार छोटा मोटा थोड़ा करते भी है और अगर उसमें मतलब कुछ चेंजेस आते हैं, वो चार नियमों का पालन करना शुरू कर देता है, 16 माला करते हैं या फिर दीक्षा के स्टेज पर पहुंचता है, तो हमारा भाव तो यही होना चाहिए ना कि ये पूर्व जन्म के ऑलरेडी उनके कर्म थे या कोई और भक्तों से संपर्क में आया या किसी गुरु की कृपा है उनके कारण हुआ है, हमारा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, दैट शुड बी योर मूड राइट।
हाँ, भाव ऐसा ही होना चाहिए कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, बस सब कृष्ण ही कर रहा है, कृष्ण शक्ति ज्ञाता ना ही प्रवर्तन। आप ये सोच सकते हो कि कृष्ण मुझे निमित्त बना रहे है और मैं अधिक सेवा कर पाऊँ इसलिए मुझे अपने आप को प्रस्तुत भी करना चाहिए निमित्त बनाने के लिए, बट ये नहीं सोचना चाहिए मैंने इतने भक्त बनाए हैं, जानते हो तुम, ये भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त तो कृष्ण बनाते हैं, हम लोग क्या भक्त बनाएंगे, कृष्ण ही भक्त बनाते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर आपने आपके प्रयास से किसी को भक्ति मार्ग में जोड़ा है तो उसको केवल दीक्षा तक पहुंचाना ही हमारा जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, उसके जब तक वो प्राण त्याग ना कर दे तब तक वो कृष्ण भक्ति में जुड़ा रहे, यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम केवल शॉर्ट टर्म एजेंसी नहीं है कि भाई आप कनेक्ट करने वाले एजेंसी, वो एजेंसी नहीं है, हम फुल टाइम एजेंसी है कृष्ण की। फुल टाइम एजेंसी का अर्थ होता है कि कृष्ण के हम परमानेंट सर्वेंट है, परमानेंट अर्थात हमें भगवान का एक एक इच्छा का ध्यान रखना पड़ता है, और वो इच्छा भगवान की ही होती है कि मनुष्य बैक होम बैक टू कॉलेज भगवान के धाम वापिस जाते। तो इसलिए कई बार हमारे इस्कॉन में हमने देखा है बहुत सारे भक्त ऐसा कहते भी हैं कि हमारा काम है कि उनको चौड़ा माला तक पहुंचा देना और दीक्षा पा देना, फिर वो जाना उसका काम जाने, गुरु जाने जो जाने, हमारा काम हो गया। लेकिन ये आधा विचार है, पूरा विचार ऐसा होना चाहिए जब हम प्रचार करें तो दीक्षा तक पहुंच गया तो गुरु क्यों जानेंगे, गुरु का काम भी मैं ही कर सकता हूँ, क्यों गुरु का काम मैं करूंगा, क्योंकि उतना बोझा गुरु को कम, उनका बर्डन मैं ले लूंगा अपने सर पर। और क्यों कृष्ण जानेंगे, कृष्ण की सेवा करने के लिए तो हम है यहाँ पर, तो गुरु और कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो कृष्ण भक्ति में अच्छे से जुड़ा रहे और जीवन समाप्त होने के पश्चात भगवान की सेवा में, अच्छा इस जीवन में भी रहे कृष्ण भक्ति में और भगवत धाम वापस भी जाए। दिस शुड बी अवर मूड, शुड नॉट बी द हाफ मूड, शुड बी द फुल सर्विस।
थैंक यू वेरी मच प्रभु।
सो और क्वेश्चन,
सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ही प्रचार माना जाता है, जैसे माताएं होती है तो घर में मेंटेन करती है सब कुछ, डीटी वर्शिप करती है, कुकिंग करती है, तो क्या ये भी प्रचार का पार्ट होता है?
प्रचार डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली, प्रचार करने वाले भक्तों के लिए प्रसाद बनाना ये भी प्रचार माना जाता है, लेक्चर देना ये भी प्रचार माना जाता है, लेक्चर देने वाले भक्तों की सहायता करना ये भी प्रचार माना जाता है, सब कुछ। यहाँ तक कि आप लेक्चर देने वाले भक्तों को आप गाड़ी व्हीकल में लेके इधर उधर जाते हो, वो भी प्रचार में आ जाता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक छापने वाला भी प्रचार करता है, बुक का प्रूफ रीडिंग करने वाला भी प्रचार करता है। लेकिन ये सारे प्रचार में जो डायरेक्ट प्रीचिंग करने वाला होता है उसकी जिम्मेदारी अधिक होती है।
ओके,
सो मोर क्वेश्चंस, एक ही हुआ ये तो, और कोई क्वेश्चन?
हरे कृष्णा।
सो
प्रभु जी, अपना दो चीजें, एक प्रचार है एक प्रसार है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
कोई ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रचार का अर्थ होता है संदेश किसी व्यक्ति को देना, और प्रसार शब्द का उपयोग होता है कि बड़े पैमाने पे लोगों को ये बात बताना। इट्स नॉट मच डिफरेंस।
ओके ब्रो,
और कोई प्रश्न? सो व्हाट यू सजेस्ट प्रेमदास, शैल वी कंटिन्यू फर्दर और वी शुड स्टॉप हियर?
मतलब बाकी सब भक्तों को, मतलब आई एम ओके, जैसे भक्त बोले और आप बोले प्रभु।
ना ऐसे करते, अभी 7-8 श्लोक तो है ही साथ में, वी शुड ट्राई टू कंटिन्यू टिल 12:30 और वी कैन डू इट अगेन, मे बी वन आवर, अनदर वन आवर इज रिक्वायर्ड।
मतलब आई एम ओके प्रभु, आप मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन, डोंट आस्क मी टू डिसाइड, बाकी भक्त आप करो प्रभु डिसाइड, आई एम ओके व्हाटएवर वे।
वी कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड वी कैन चेक द डिवोटीज ओपिनियंस। सो टेक्स्ट नंबर 70,
और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वे अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है।
आप भगवान कहते हैं कि जो केवल हमारे डिस्कशन को सुनेगा, केवल इसको अध्ययन करता है, मैं ये समझ लो कोई बुक खोल के पढ़ता है, सो दैट इज आल्सो वर्शिप, अर्थात तो पूजा के रूप में भगवान ने इसको एक्सेप्ट किया है। It is as good as worship. So auspicious. भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त, जब आपने भक्ति शास्त्र कोर्स किया, इसका अर्थ हुआ कि आपने धूप दीप चावल सब लेकर के अपने भगवान की पूजा की, ऐसा भगवान मानेंगे। कृष्णा इज एक्सेप्टिंग इन दिस वे, वर्शिप कृष्णा, सो ऑस्पिशियस कृष्णा से। Now again he is saying something more, Gosha, 71.
और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुद्ध लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। इस अध्याय के 67 श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पाप,
यस पढ़िए,
हेलो, सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं जो पुण्य आत्मा है वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनावृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मानाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य से में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है।
प्रभुपाद यहाँ पर बताते पहले पैराग्राफ में जो भक्त ऐसा होता है कि लेक्चर आप देते हो पब्लिक क्लास संडे फिश लेक्चर होता है, तो इसमें जरूरी थोड़ी होती है कि आप देखे कर को पहले चेक करोगे कौन भक्त है कौन तपस्वी है, उसके बाद उसको बिठाएगी। इससे अधिकतर केस में हम लोग मास प्रीचिंग करते हैं और जो द्वेष नहीं करते वो एक्सेप्ट कर देते, जो द्वेष करते वो चले जाते हैं, तो वी शुड नॉट बी बॉदर अबाउट देम। लेकिन जो अगर थोड़ा बहुत भी सुनेगा, एक क्षण भी सुनेगा, ज्यादा नहीं सुनेगा, ऐसा बहुत देखा है हमने। मैंने तो अपने प्रभुपाद की लाइफ में बहुत सारे देखे एग्जाम्पल, मैं खुद भी देख कि अचानक से कोई आया है दो मिनट लेक्चर में बैठा और उसको इतना अच्छा लगा, दे कम टू अस बाद में और हमें कहते हैं कि हमने इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं था। ऑफकोर्स जरूरी नहीं कि वो लोग बाद में फिर से भक्ति में जुड़ेंगे या नहीं, बट वो उनको टच करता है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी तो कृष्ण भक्ति में अवश्य जुड़ेगा ही, इसलिए उसको पुण्य तो प्राप्त होता ही है। फिर भगवान यहाँ प्रभुपाद तंत्र में साधारण लोगों की जो इस प्रकार की जो आकर्षण होता है इससे पुण्य प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति जो भक्ति का आचरण करते हैं वो पुण्यात्मा बन जाते हैं। हो सकता है वो भगवत धाम ना जाए क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, तो ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है, ध्रुव लोक का तारा प्रभुपाद स्पेशली मेंशन किया है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, आप में से अगर कोई एस्ट्रोनॉमी जानता है आकाश का जानता है तो ध्रुव का तारा आकाश में अभी भी दिखाई दे रहा है डेली। You must, and that is the place that is very pious, very auspicious, because Lord Narayan is staying there. और एक लोक है इस ब्रह्मांड में जो कि सूतल लोक है, जहाँ पर भी नारायण रहते हैं। शायद एक दो लोक है जहाँ पर नारायण अभी भी रहते हैं, वो auspicious। तो आप यहाँ से अगर आप कभी रात को, आज ऐसे भी पॉल्यूशन तो कमी है तो आप सारे तारे देख सकते हो आज रात को भी जाकर के, तो आकाश में आप देखोगे तो ध्रुव का तारा दिखेगा। So now you can imagine that same जो moon जो ध्रुव का तारा है वो is a place where Narayan is living, Narayan वहां पर रहते हैं। So इस तरह से भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धा समय द्वेष रहित होकर के सुनता है, उसके वो सब पाप से मुक्ति को प्राप्त करता है। अब भगवान समराइज करते हैं, पढ़िए टेक्स्ट नंबर 72।
प्रभु एक क्वेश्चन है।
हाँ पूछिए।
जैसे कि आपने बताया कि कोई भक्त शुद्ध नहीं होता है और ध्रुव लोक को जाता है, बराबर, तो ध्रुव लोक से भी फिर वापस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है कि फिर वहां से ध्रुव लोक से डायरेक्ट गोलोक धाम जाता है?
डिपेंड्स, मोस्टली तो आना ही पड़ता है, लेकिन कोई बहुत शुद्ध भक्ति में जुड़ना चाहता है और उसकी तीव्र इच्छा है और वो अपने अपनी चेतना स्थिर बनाए रख सकता है तो यू कैन गो फ्रॉम देयर आल्सो, वहां से भी वो जा सकता है भगवत। लेकिन साधारणतः नियम ये है कि पृथ्वी लोक पे आना ही पड़ता है और फिर वो भगवान के धाम जाता है।
वो एक और पॉइंट था जैसे आपने बताया, तो ये मेरा अनुभव था, जैसे आपने बताया कि कोई व्यक्ति कभी कभी एक बार सुन के या ऐसे करके भी मतलब काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक बार 2017 में दिसंबर में मैराथन में मकरबा एरिया में गए थे, अतिप्रिया प्रभु एक घर पे गए थे और वहां पे उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो भी लकीली ओरिया थे और वो भी ओरिया है, तो उन्होंने कुछ बातचीत किया और फिर हमने उसके 4-5 महीने के बाद अप्रैल में हमने डीवाइस कोर्स किया, तो वहां पे उन्होंने वो भक्त को वहां पे एनरोल किया और वो जुड़ गए। अराउंड 1 या 2 महीने के अंदर वो प्रभु 16 माला तक पहुंच गए और वो मतलब इतने सिंसियर अभी भी है और आप उनको जानते भी है। और फिर द प्रॉब्लम वॉज कि उनके वाइफ वो मतलब इतने जुड़े हुए नहीं थे, पर जैसे आपने बताया अभी कुछ समय पहले वो आंसर में, तो उन्होंने भी मतलब बहुत अच्छी तरह से उनकी वाइफ को मतलब कोई फोर्स नहीं किया, अच्छी तरह से उनका बिहेवियर वगैरह। तो अभी मतलब अभी सिचुएशन है कि अभी वापस वो वहां पे उड़ीसा चले गए भुवनेश्वर, और बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं और सोलह माला कर रहे हैं सब कुछ, और उनकी वाइफ भी सोलह माला कर रहे हैं अभी। तो ये सिर्फ एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्होंने एनरोल किया, और फिर ये डिवाइस कोर्स में उन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी किया, और फिर एक महीने में बहुत जल्दी ही वेरी क्विकली ही एडवांस्ड।
यस, क्योंकि उसका वो वेट ही कर रहे थे, इसको हमारे आते ही नहीं है, लोग कर नहीं, प्रचार ही नहीं करते, जिस दिन वो लोग प्रचार करने आएंगे मैं तुरंत भक्त बन जाऊंगा, और वेट ही करते होते हैं। तो जनरली उनके पुण्य कर्म फलीभूत हुए होते हैं, पूर्व जन्म के उनका कनेक्शन होता ही है, वो लोग केवल वेट करते हैं कि हमारे भक्त जाए और उसको प्रचार करे, और तुरंत भक्ति में जुड़ना शुरू हो जाता है उनका। सो दिस वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भगवान हमें निमित्त बना सकते हैं ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए भी। We should be always ready to offer our services. Okay, so yeah, next text, text number 72.
हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने ऐसे इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है?
तात्पर्य,
भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है।
So special, Krishna is so merciful. भगवान इतने दयालु है कि भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन केवल तुमने सुनी है कि नहीं सुनी, अगर तुम्हें पता पड़ गया है तो अच्छा है, अगर तुम नहीं समझ पाए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा भगवद गीता फिर से बता देता हूँ। I can tell you entire भगवद गीता or one particular chapter or whatever you want, मैं तुम्हें पूरा बता सकता हूँ। So, जो लोग भगवद गीता सुनते हैं उसको भी ये लाभ प्राप्त होता है, और अर्जुन की तरह, और जो लोग भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं उस तरह से हम भी आपको एज ए भक्ति शास्त्र कोर्स के माध्यम से हम भी आपको यही कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगा कि प्रभु जी आपने 18 अध्याय पढ़ाने में बहुत देर कर दी और इट हैज टेकन टू लॉन्ग, अब हमें आगे भूल गए, अब हम कुछ नहीं बता, तो ऐसे हमारी पॉलिसी तो नहीं है कि कोर्स फिर से पढ़ाने का, लेकिन पर्सनली आई कैन हेल्प यू अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो। कृष्णा इज ऑल्सो आस्किंग, सो उनके फॉलोअर्स जो होते हैं उनको तो आस्क पूछना ही पड़ेगा। और ये भगवान ने अर्जुन को इसलिए पूछा था क्योंकि आउट ऑफ अफेक्शन फॉर ए सरेंडर स्टूडेंट, जो अर्जुन भगवान का शरणागत विद्यार्थी था और प्रेम के कारण भगवान ने ये कहा था। एंटायर भगवद गीता फिर से बोलना, स्टार्ट अ स्मॉल थिंग, भगवान ने ये ऑफर रखा, आई कैन टेल यू एंटायर भगवद गीता अगेन फॉर योर बेनिफिट। दिस इज सो कृष्ण इज सो मर्सीफुल, ही इज रेडी टू गिव यू एंटायर भगवद गीता। ओके, सो नाउ अर्जुन इज आंसरिंग दैट, पढ़िए।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए।
सो दिस इज वेरी फेमस श्लोक, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत् प्रसादान मया अच्युत। स्थितोस्मि गतो संदेह करिष्य वचनम तव। सो सेम श्लोक, या भगवान के अर्जुन कहते हैं कि नहीं 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 कृष्ण, हे कृष्ण है अच्युत, नष्ट मोह, मेरा मोह जो था वो नष्ट हो गया, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये होता हूँ, ये वो सब चला गया, स्मृति लगवा, मेरी पुनः जो स्मृति वो प्राप्त हो गई वापस कि मुझे क्या करना चाहिए, कि क्यों हुआ ऐसा। तब प्रसाद आया, आपकी कृपा से है अच्युत कृष्ण, आपकी कृपा से हुआ। अब स्तोष्मी, अब मैं स्थिर हो गया, गत संदेह, अब कोई संदेह नहीं रहा शेष। अब मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, जैसे आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। वहां पर अर्जुन ने पूछा, भगवान ने पूछा है ना, जैसे इच्छा से तथा करो, जैसे इच्छा आप करो। अब अर्जुन ने इसका उत्तर दिया कि अब मैं बिल्कुल वही करूंगा जो आपने मुझे कहा है। सो इस तरह से श्री प्रभुपाद श्रीमद भागवतों के एक तात्पर्य में कहते हैं कि शुरुआत में अर्जुन अपने आप का निजी स्वार्थ देख रहा था, क्योंकि वो इच्छा करता था कि वो युद्ध ना करे और युद्ध के परिणाम से बच जाए, लेकिन भगवान उसको इच्छा सब प्रकार की अन्य इच्छा से मुक्त कराने के लिए उसको भगवद गीता का उपदेश दिया पूरा, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग और भक्ति योग का भी वर्णन किया, अलग अलग तरीके से भगवान ने उसको समझाया। क्योंकि भगवान के सामने अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे थे वो कोई प्रिटेंशन या कोई ढोंग नहीं कर रहा था अर्जुन, इसलिए जैसे ही भगवान के द्वारा उसको ये उपदेश प्राप्त हुआ, उसको समझ आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, तो तुरंत उसने अपना डिसीजन बदल दिया और वो एग्री हो गया भगवान को संतुष्ट करने के लिए और सब प्रकार की इच्छाओं के चक्रव्यूह से मुक्त हो गया। तो वास्तव में भगवान हमसे भी यही चाहते हैं कि अन्य इच्छा जो होती है मुझे प्रसन्न करने के अतिरिक्त और जो भी इच्छा है वो इच्छा को फेंक दो, उसको त्यागो। दे आर योर एनिमीज, डिजायर्स आर योर एनिमीज, सो जस्ट गिव देम अप एंड टेक द डिसीजन, चेंज योर डिसीजन। आपका पहला डिसीजन क्या था, हमारा अभी हमारा डिसीजन क्या है, मेरा डिसीजन क्या है कि मैं इंद्रियों को श्रवण करूंगा, अर्थात इंद्रिय भोग करूंगा, स्वतंत्र होकर के स्वामी बनूंगा और थोड़ा बहुत मुझसे भक्ति होगा तो ठीक है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि चेंज योर डिसीजन, सरेंडर टू मी, मेरे शरणागत हो जाओ, अपना इच्छा के चक्रव्यूह से निकल जाओ एंड जस्ट सर्व व्हाट आई वांट। परिश्रय वचन तब नष्ट मोह, ये मोह नष्ट करने का भगवान अर्जुन एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर अर्जुन विश्वनाथ चक्र ठाकुर में आगे कहते हैं कि अर्जुन का रिप्लाई है कि अब इससे आगे तो प्रभु मैं और क्या कहूँ, सब प्रकार के धर्मों का त्याग करके मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ और अब मेरा सब प्रकार का चिंता चला गया, अभी आपके चरणों में मेरी पूर्ण श्रद्धा है, आपका पूरा आश्रय मैं ग्रहण करता हूँ, आपके द्वारा बताया गया जो आदेश है वो ही मेरा धर्म है, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ, आप सबको शरण देने वाले हो, अब मुझे मेरा आश्रम या ज्ञान योग की विधि या कर्म योग की विधियों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अब से अलग अलग प्रकार की जो विद्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तब कृष्ण कहते हैं थैंक यू अर्जुन, योर माय डियर फ्रेंड अर्जुन, बड़ा अच्छा लगा अर्जुन ने जब ये कहा, भगवान उसको रिप्लाई करते हैं कि मेरा एक छोटा सा काम बाकी है, मैं ये भू भार हरण करना चाहता हूँ, ये पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया है, तो भगवान निरंतर इस तरह से भू भार हरण करते रहते हैं नियमित रूप से, जैसे आजकल ये कोरोना वायरस कोरोना असुर आया हुआ है, ये कोरोना असुर पूरे विश्व में सबका भू भार हरण कर रहे हैं, तभी जब तक चलेगा तब तक चलेगा, फिर कोरोना सुदन कृष्ण आएंगे और कृष्ण विल किल इट, तो वापिस लोग नॉर्मल जीवन जीना शुरू करेंगे। तो भगवान चाहते हैं यहाँ पर भू भार हरण करने के लिए, तो अर्जुन को कहा कि कैन यू डू मी अ फेवर, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मैं ये महाभारत का युद्ध में सबको समाप्त करना चाहता हूँ। यस यस, मैं तो यही करना चाहता हूँ, आई विल टेक नाउ पूरा गांधी सबको मारूंगा, अब भीष्म द्रोण सब सबको खत्म करूंगा, डोंट वरी। हाँ अर्जुन आयुष्य भीष्म को मार देगा तुम द्रोण को भी, हाँ हाँ अब कोई चिंता नहीं, अब द्रोण भीष्म कोई भी रहे दुर्योधन सबको मार दूंगा, डोंट वरी, दिस इज व्हाट आई वांटेड। कृष्ण यही तो चाहते थे, इसलिए we should now surrender to Krishna. And this way we can be successful. Okay, so Sanjay Vach.
संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र को कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है।
तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण का संवाद तो यही खत्म हो गया। पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा अर्जुन को कि यस तुम्हारा क्या इच्छा है तो भगवान अर्जुन ने बता दिया नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। अब सब प्रकार की जो इच्छा है वो चली गई है। एक रूप से भगवत गीता तो एक रूप से समाप्त हो जाती है। अब तो संजय बता रहे हैं कि ये दोनों का कॉन्वर्सेशन मैंने सुना। सो अगेन वी जस्ट रिपीट द सेम पॉइंट कि भगवत गीता का जो मूल संदेश है वो यही है कि सब प्रकार की जो मानसिक तरंगे है सब प्रकार की विचारधारा है सब प्रकार की इच्छा है उसका त्याग करके डू व्हाट कृष्णा वांट्स। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। डू व्हाट कृष्णा वांट्स। वन शुड नॉट डिजायर फॉर एनीथिंग पर्सनल। हमें कुछ व्यक्तिगत नहीं सोचना चाहिए। हमारी इच्छा करने की क्षमता जो है प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे हैं कि इच्छा करने की जो क्षमता है वो समाप्त नहीं होगी। आप इच्छा रहित कैसे हो सकते हो? ये तो मूर्खता है। डिजायरलेस हो ही नहीं सकते। कोई कहता है कि इच्छा रहित हो जाओ, वो नहीं हो सकता। इच्छा तो जीवन का लक्षण है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। बट मैं इच्छा को शुद्ध कर सकता हूँ। मैं अगर शरीर की भावना से मुक्त होकर के इच्छा करता हूँ तो मेरी इच्छा शुद्ध हो गई, अदरवाइज वो अशुद्ध रहेगी। तो इच्छा जो है उसको शुद्ध करना चाहिए। भगवद गीता चैतन्य चरितार्थ में इसके विषय में कहा गया है, नारद पंचरात्र में भी कहा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पद प्रेम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। सब प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर के कृष्ण की सेवा करना। चैतन्य चरितार्थ में कहा है कि आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे तार नाम काम। अर्थात अगर आप निजी इच्छा पूरी करते हो तो काम माना जाता है, लेकिन आप कृष्ण की इच्छा पूरी करते हो तो उसको प्रेम माना जाता है। देखने में एकदम समान लगता है, लेकिन एक में है खुद की इच्छा पूरी करना, दूसरे में है कृष्ण की इच्छा पूरी करना। सो कृष्ण भावनामृत संग हमें यह सिखाता है कि किस तरह से कृष्ण की इच्छा पूरी करना। We cannot manufacture that I am doing for Krishna. This is also misleading. Therefore, we require guidance of spiritual master. Guru Krishna Kripa. हम खुद से ये नहीं कह सकते कि मैं तो सब कुछ जो कर रहा हूँ कृष्ण की इच्छा, कृष्ण के सुख खुशी के लिए नहीं। गुरु जैसे बताते हैं वैसे करने से ही तुम कृष्ण को प्रसन्न कर पाओगे। This is the idea. Now this is the way we should accept what Arjuna is accepting. कर्म का अर्थ होता है मेरी इच्छा पूरी करना और भक्ति का अर्थ होता है कृष्ण की इच्छा पूरी करना। यहाँ पर यह अंतर होता है कर्म और भक्ति के बीच में। तो हमें ये इच्छा करने सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो आपके लिए सक्सेसफुल है। अगर आप चाहते हो आपकी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो देन यू आर नॉट सक्सेसफुल। दिस इज अवर लाइफ। कृष्ण वॉन्ट्स इट, आई मस्ट डू इट। कृष्ण चाहते हैं तो मुझे अवश्य करना है, उसके दिल को खुश हो जाए। ये जो भाव है दिस इज वृंदावन। सारे वृंदावन के निवासी एक ही इच्छा के साथ जीते थे, कावड़ बॉयज थे, गहिये थे, बछड़े थे, वृक्ष है, लता है, फूल है, जल है, गोपियां है, एल्डरली जो लोग थे, माता यशोदा है, नंद महाराज, सबका एक ही इच्छा है, हाउ टू फुलफिल कृष्णस डिजायर, किस तरह से कृष्ण की इच्छा पूरी करें, दिस इज द ओनली डिजायर दे हैव एंड दैट इज वृंदावन, वो है वृंदावन। अगर हम भी इसी प्रकार से जीवन जीते हैं तो हम इस भौतिक जगत को भी वृंदावन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पर अर्जुन का, कृष्ण अर्जुन का जो संवाद यहाँ समाप्त हुआ, तो संजय ने कहा कि ये जो घटना मैंने सुनी थी वो इतना अद्भुत था कि मेरे पूरे शरीर में रोमांच होने लगा। नाउ अभी व्यास प्रसाद की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 75, 76, 78 चार श्लोक बचे हैं, so shall we do it again sometime or maybe today tomorrow sometime?
हाँ प्रभु, next time करेंगे जैसे आप मतलब बताएं।
So we can do it next Monday also, or we can do it tomorrow or today also, whatever. Next Monday is better.
Tomorrow morning is also fine to same time या next Monday जैसे बाकी सब भक्त बोले।
ठीक है, आप coordinate कर लीजिए।
हाँ ठीक है।
आज रात को भी करना होगा तो we can do it 8 to 9 in the evening. और कल करना होगा तो